अतिरिक्तमस्ति। विद्या कलास्ते तन्वश्च सर्वा
सप्तम संत के तीसरे अध्याय के हम लोग आज इस 32वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। और ये श्लोक जो है, ये वार्ता चल रही है हिरण्यकश्यपु और ब्रह्मा जी के मध्य में। हिरण्यकश्यपु लंबी तपस्या के बाद ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर अब उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी का अब जो है गुणगान उन्होंने शुरू किया है। और इस गुणगान में वो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार जब कोई व्यक्ति अविद्या में या ज्ञान में होता है तो किस प्रकार वो किसी को कुछ भी मान लेता है और किस प्रकार वो क्लोरीफाई करता है। तो यहाँ पर जो जो क्वालिटीज पिछले तीन चार पांच श्लोकों से जो ब्रह्मा जी की बताई जा रही हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि बहुत निम्न भाग ऐसा होगा जो ब्रह्मा जी करते हैं, बाकी सारे के सारा वो भगवान विष्णु की या कृष्ण की ही क्वालिटीज का गुणगान कर रहे हैं। डायरेक्टली इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि डायरेक्टली करेंगे तो सरेंडर हो गया भगवान को। भगवान की विशेष योजनाओं के माध्यम से जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में इस भौतिक जगत में अवतरित हुए, है ना। और जो गाय माता है जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है तो भगवान के पास जाती है, ब्रह्मा जी के पास जाती है, ब्रह्मा जी भगवान के पास जाते हैं कि अवतार लीजिए। तो इस लीला के माध्यम से भगवान समय समय पर अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भार, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ, भगवान का वैसा कहना है। और जैसे किस किस रूप में अवतरित होते हैं, जिस जिस रूप की आवश्यकता पड़ती है। अगर पृथ्वी जब हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में पहुंच गई थी तो वहां से बाहर निकालने के लिए भगवान ने वराह रूप का अवतार लिया। जब सारे वेद इत्यादि जब प्रलय आती है तो सारे धाम डूबते हैं तो मीन अवतार में इसको ऊपर कर लेते हैं। इस अवतार में भी जो होने वाला है हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, अभी वो सारी बातें कहेंगे कि मैं ऐसे ना मरूं वैसे ना मरूं, और अमर होने का भी वरदान मांगेंगे। तो एक किस्म से उनको लगता है मैं अमर हो ही गया, है ना। किसी भी चर और चर व्यक्ति से ना मरूं, कोई भी देवता ना हो और मनुष्य ना हो। तो इसमें इस ब्रह्मांड की हिरण्यकश्यप ने हर चीज़ मांग ली कि इस ब्रह्मांड का कोई भी ना हो जिससे मैं मरूं। और इस प्रकार की इच्छाएं पूरी कराने के बाद उसको लगा कि बस अब कोई मेरे साथ वध नहीं कर सकता मेरा। इसका कारण ये भी था क्योंकि कई बार क्या होता है कि असुरों के ऊपर देवता लोग हावी हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि असुर जब अटैक करते हैं कई बार असुर लोग देवताओं पे हावी हो जाते हैं। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, अगर दो चार देवता इकट्ठे हो गए तो भी हिरण्यकश्यप को मार सकते थे, है कि नहीं। अगर सारे देवता इकट्ठे हो जाएं और सारे अपनी शक्ति अपने बाण अपने वज्र इत्यादि को छोड़ें तो हिरण्यकश्यप को लग सकता था कि मैं मार सकता हूँ, लेकिन उन्होंने क्या करा, पहले ही क्या कर लिया, लॉक कर लिया कि भाई मैं जो हूं इस ब्रह्मांड के किसी भी व्यक्ति से ना मरूं, है ना। ब्रह्मा जी से बोल दे कि आपके बनाए हुए व्यक्ति से ना मरूं मैं। अब जब मरेंगे तो किसके हाथ मरेंगे, जिनको ब्रह्मा जी, जिनको जो ब्रह्मा जी को भी जो बनाते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर हिरण्यकश्यप ने भगवान को ग्लोरीफाई किया है, लेकिन वो सारे गुण जो जानते हैं कि भगवान के हैं वो ब्रह्मा जी के लिए बोल रहे हैं, डायरेक्ट भगवान का अप्रिशिएशन नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है जिस प्रकार दंत वक्र इत्यादि भी बचपन से ही भगवान को गाली गलौज करा करते थे, है ना। और एक लंबे समय तक उनकी माता को एक वचन के अनुसार उन्होंने कहा था कि मैं इसको छोड़ दूंगा, है कि नहीं, कि सो ऐसी गलतियां करेगा जब ये शिशुपाल और दंत वक्र कितनी हर ऐसी गलती होगी जिसमें मार दिया जाए, है कि नहीं। तो ऐसी 100 गलतियों पर मैं इसको माफ करूंगा। तो मतलब हर गलती जो वो कर रहा था उसमें मृत्यु थी उसकी, लेकिन भगवान ने क्योंकि उनकी माता को वचन दिया था कि मैं इसको तभी मारूंगा जब इसके 100 गलतियां माफ कर देंगे, वो भी ऐसी गलतियां जिसमें मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तो बचपन से ही पैदा होते वो गालियां देते थे और बड़े होते हुए भी गालियां देते रहे, भगवान को खूब कोसते रहे। और फिर एक दिन ऐसा समय आया जब उनका घड़ा भर गया, या उनका जो टाइम पीरियड था गालियों का या भगवान से द्वेष का वो पूरा हो गया, और उसके बाद भगवान ने क्या किया, उनका वध कर दिया। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो अब जो इन गुणों से हिरण्यकश्यप जी भगवान का गुणगान कर रहे हैं, अर्थात ब्रह्मा जी का गुणगान कर रहे हैं। वैसे हमने पिछली बार बताया था कि जब जब कोई व्यक्ति अज्ञानता में होता है तो वो हर चीज मोहवश या भ्रमवश किसी को कुछ का कुछ मान लेता है, और उस मानने से क्या होता है, उसकी जितनी भी पूजा इत्यादि है बताया जाता है अविधि पूर्वकम, वो अविधि से होती है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो भी पूजा इत्यादि करता है, अर्चना इत्यादि करता है, उसका मार्ग उसका ध्येय उसका ठीक नहीं रहता, किसी को कुछ भी मान के कर लेते हैं। और जबकि हम देखते हैं भगवद गीता में और अन्य ग्रंथों में भी भगवान कृष्ण जब ये बोलते हैं कि ये सब मैंने किया है, ये करने वाला मैं हूँ, या फिर अर्जुन के द्वारा जब भगवान ने अहम सर्वस्य प्रभु इत्यादि श्लोकों का उच्चारण किया और कहा कि सब कुछ आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण मैं ही हूँ, तो ये सब जानने के बाद अर्जुन ने भगवान को परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, इस प्रकार परम शब्द इस्तेमाल कर भगवान की जो है स्थिति को सामने रखा। आज के श्लोक में भी परम शब्द इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को परम कह के उच्चारित कर रहे हैं, जबकि अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने देवल नारद व्यास इत्यादि सब लोग आपको परम मानते हैं, क्योंकि आप परम हैं, इससे पहले भी ऋषि मुनि कह के गए हैं, और अब मैं देख रहा हूं आप मुझसे कह रहे हैं, तो उन्होंने और भी रेफरेंसेस दिए। और परम शब्द का मतलब प्रभु बात कह रहे हैं कि जो मुख्य कारण हो हर चीज का, तो भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभव, मैं दोनों आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूं। जब भगवान कृष्ण ऐसी कोई बात बोलते हैं कि ये सब मैंने किया, इस जगत का कारण, उस जगत का कारण, इस क्रिएशन का कारण, इस मून का कारण, ये सब मैंने बनाया है ना, तो देखते हैं इस वार्ता में भगवान कृष्ण ऐसे कामों को भी बोल देते हैं जो वो अपने पार्षदों से करवाते हैं या देवताओं से करवाते हैं। अब सृष्टि की रचना का भार किसको दिया गया है? ब्रह्मा जी को, लेकिन भगवान कहते हैं ये भी मैंने किया। शिव जी को दिया है इस सृष्टि का क्या करना, संहार करना, लेकिन कई बार श्लोक में भगवान कहते हैं ये भी मैं ही करता हूं। क्यों बोलते हैं ऐसा? या वो सारे कार्य भी भगवान बोलते हैं कि ये भी मैं करता हूँ, वो भी मैं करता हूँ, क्यों कहते हैं? क्योंकि वास्तव में ये सारे काम भगवान ही करते हैं या भगवान की ही शक्ति से होते हैं। जैसे कभी कोई व्यक्ति जो बिल्कुल किसी भी विषय में नहीं जानता और वो खबर का सारे प्रश्न कर रहा है, तो कोई व्यक्ति जैसे जो कोई कंपनी का मालिक हो और वो व्यक्ति बोल रहा है ये कंपनी कैसे चल रही है या कैसे, तो वो जब कभी रिपोर्ट करता है या किसी को कुछ बताना चाहता है तो ये बोलते हैं ये भी मैं ही करता हूँ, है ना, ये भी मेरा ही है, ये भी हमने किया, ये भी मैं ही कर रहा हूँ। क्यों बोलता है वो? ये नहीं बोलेगा कि मैंने नहीं लेबर रखी है, ये मैं बनाता हूँ, है ना, वो कहता है ये मैं बनाता हूँ, मेरा प्रोडक्ट है ना, तो बनाता वो नहीं है, वो कहीं से रॉ मटेरियल खरीदता है, मशीन्स खरीदी हुई हैं, लेबर रखी हुई है, वो बनाती हैं, मैनेजर रखे हुए हैं जो कि सैलरी कैलकुलेट करते हैं, उनको सैलरी देते हैं मंथली। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, या वो एम्प्लॉयर क्या कहता है, ये मैं बनाता हूँ, है ना, ये भी मेरा पीस है। तो जब एक छोटी कंपनी का मालिक जो छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर हर चीज़ को बोलता है कि ये मैं करता हूँ, है कि नहीं, वो किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि नहीं मेरे पास जो पिछले 25 साल से काम कर रहा है व्यक्ति, जिसकी ये क्वालिफिकेशन है, इसकी इतनी सैलरी है, ये है, वो इतनी डिटेल में नहीं जाता, जबकि इन सबको उन्होंने किस लिए रखा हुआ है, यही सब काम करने के। लेकिन जब किसी को बताया जाता है कि मैं कर रहा हूँ, तो मतलब सर्व कारण का, सभी कारण के कारण वो है, और फिर वो बता रहे हैं कि मैं करता हूँ, जैसे सृष्टि का आदि भी मैं हूँ, मिडल भी मैं हूँ, एंड भी मैं हूँ। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में अपनी सुप्रीमेसी, अपना जो है अपनी भगवत्ता अर्जुन के सामने पेश कर रहे हैं, और भगवद गीता के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं कि अल्टीमेटली सभी कारणों के कारण कौन है। जब कोई व्यक्ति अज्ञानता में होता है, जब ठीक प्रकार से नहीं जानता कि कौन क्या है, तब व्यक्ति जो है किसी को कुछ भी मान लेता है। अज्ञानता ही तो है ना, जब कोई व्यक्ति किसी को जानता नहीं या किसी को अपने हिसाब से अपने मन से किसी को भी भगवान मान ले या किसी को भी रिस्पेक्ट देने लग जाए, तो ये उसका खुद का मन है। और जनरली हम जानते हैं जितने भी लोगों से मिलते हैं, चाहे वो दार्शनिक हों, चाहे वो बहुत बड़े कवि हों, चाहे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हों, या कोई बहुत समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल व्यक्ति हो, जब कभी इनसे बात करोगे खासकर धर्म के विषय में, तो ये सबसे पहले लोग क्या बोलते हैं कि मेरा मानना ये है कि भगवान ऐसे हैं। ये कहते हैं मेरा मत ये है कि भगवान शायद ऐसे हैं, ये अपना मत पेश करते हैं। और जनरली हमारे अंदर भी कई जगह टेंडेंसी ऐसी होती है, जो लोग पूरी तरह से नहीं समझते, वो यही बोलते हैं कि भाई मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, है ना, हम अपना ख्याल इस्तेमाल करते हैं, हमारे ख्याल की वास्तव में कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि अगर हमारे ख्याल और हमारे मन में आए और हमारे मंतव्य के हिसाब से काम चलने लग जाएगा, तो ये संसार भगवानों से भरा होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना भगवान होगा, हर व्यक्ति की अपना एक कंसेप्ट होगा, इतने सारे विचार, और फिर इतने सारे मतों में भेद होगा, है कि नहीं। और जब मत भेद होगा तो फिर क्या होगा, हृदय में भेद होगा, और जब हृदय में भेद होगा तो वाणी में बात भेद होगा, वाणी में भेद होगा तो फिर ये सब जो है हाथों में कर्मों में आ जाएगा, और फिर लड़ाई इत्यादि। इतना बड़ा संसार भगवान ने बनाया, इस संसार में भगवान ने हर व्यक्ति की शारीरिक मानसिक योग्यता को देखकर, काल और परिस्थिति को देखकर भगवान कृष्ण ने अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स, गुरुजन भेज दिए, ये समझाने के लिए कि उस धर्म के इस तरह की कंडीशन के लोग को कितना समझाया जा सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति देखे पशुओं का जीवन, तो पशु के जीवन में हम क्या देखते हैं कि वो एक दूसरे को मार कर खाते हैं। पशुओं के जीवन में केवल चार ही काम मुख्यतः रहते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, सुबह से लेकर शाम। और इन कार्यों को अच्छे ढंग से करने के लिए या इन कार्यों की पूर्ति के लिए वो कुछ भी करते हैं। फिर पशुओं के जीवन में संबंधी वाला सिस्टम नहीं होता, रिलेशन वाला सिस्टम नहीं होता कि भाई ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बुआ का लड़का है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ मेरी बहन लगती है, ऐसा सिस्टम नहीं होता। इन पशुओं के जीवन में विवाह के संस्कार नहीं होते, गर्भधारण के संस्कार नहीं होते, मृत्यु के संस्कार नहीं होते, रक्षाबंधन नहीं होता, तीज त्यौहार नहीं होते, इन पशुओं के जीवन में नहीं होते, है कि नहीं। वस्त्र पहनना या ना पहनना इन्हें कुछ पता नहीं, इनका ध्येय क्या है, आहार, निद्रा, भय, अर्थात अपने जीवन को इन्हीं चार कामों के लिए लगाना। दूरदर्शिता नहीं होती, इसलिए कहीं देखेंगे अगर किसी को, जानवर को अच्छी घास मिल गई खाने के लिए, तो घास खा के आगे चला जाएगा, जहां सूखा पड़ा होगा वो पूरा दिन वहां ढूंढता रहेगा। एक पशु को कुछ मिल गया खाने के लिए, उतना खाएगा लेके चला जाएगा। चिड़िया को कुछ मिल गया अनाज, तो खा के चली जाएगी। तो भविष्य का ज्यादा नहीं सोचते लोग, क्योंकि बुद्धि बहुत ज्यादा विकसित नहीं है। एक पशु सड़क पर अगर लेटा है, उसको मालूम है बार बार गाड़ियां आके उसको तंग कर रही हैं, बट वो फिर भी सोने की कोशिश करता है। वो कहते हैं पागल क्यों बार बार आ रहा है, हॉर्न बजाता है, कभी टांग पर चढ़ा देता है, उनको समझ नहीं आता। लेकिन कुत्ते को समझ नहीं आ रहा कि वो सड़क पर लेटा है, लेकिन नहीं, सीमित बुद्धि है और उससे ज्यादा दूर नहीं सोच सकते। तो जो चीज पशुओं के जीवन में हम देखते हैं, अगर ऐसा पशुवत जीवन जीने वाला व्यक्ति, जिनके यहां पर माता बहन इस प्रकार के संबंधों को नहीं देखा जाता, और ये लोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी को भी खा लेते हैं, ऐसे पशु भी देखे होंगे जो अपने बच्चों को खा लेते हैं, सुना आप, सांप, हाँ छिपकली, पता नहीं आप लोग देख लीजिए, मतलब बहुत सारे, मतलब ऐसे पशु जो अपने बच्चे को खा लेते हैं। और ऐसे भी देखे होंगे अपने जानवर जो अपने संबंधों को नहीं जानते और किसी के साथ भी मैथुन करते हैं, सारे होंगे, है ना। और ऐसे भी देखे होंगे जो पशु निद्रा के लिए कहीं पर भी सो जाते हैं, है कि नहीं। तो पशुओं का जीवन जब हम लोग देखते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को भी खा लिया, किसी के साथ भी संबंध बना लिए, कोई धर्म इत्यादि नहीं पालन किया जाता, ऐसी चेतना के लोग अगर मान लीजिए दो पैर लगकर मनुष्य फॉर्म में आ जाए, तो उनको क्या बोलेंगे। लेकिन हो सकता है ऐसे पशुवत जीवन को जीने वाले लोग, पशु की मान लीजिए अगर पांच पॉइंट है, मतलब पांच पॉइंट का मतलब एक वो बता रहा हूं, स्टेट बता रहा हूं, उसकी बुद्धि का कितना एवरेज है, जितना वो सोच सकता है, फाइव लेवल तक सोच सकता है, और फाइव लेवल तक सोचने तक वो सब ये करता है जो हम बात अभी कर रहे थे, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति को मनुष्य जीवन मिल गया और उसकी चेतना सिक्स कर दी गई, सिक्स में फिक्स कर दी गई, तो है उसके दो पैर, है उसके दो हाथ, तो उसका लेवल दस वाला नहीं, छह वाला लेवल। तो उसके कर्मों में आप क्या सोचते हैं, क्या भिन्नता और समानता होगी, क्या लगती है। पशु है, मतलब मनुष्य है, मनुष्य का देह है, और बुद्धि में एक पॉइंट आगे बढ़ गया, तो इसका जीवन कैसा होगा। जो डेवलप कॉन्शियसनेस का व्यक्ति है, जिसके 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स मतलब वो व्यक्ति जो भेद करना जानता है, संबंधों में, धर्म में पालन करना जानता है, साधना अच्छी लगता है, सतोगुण तमोगुण समझ रहे, सात्विक वृत्ति का है। तो जो 6 लेवल पर है उसकी उसकी क्रियाएं कैसे होंगी? हाँ जी, कुछ बेटर होगी लेकिन 10वें वाले लेवल पर नहीं होगी, है कि नहीं? किस ज्यादातर उसकी क्रियाएं किससे मिलेंगी? पशुओं से ज्यादा मिलेंगे, लेकिन कहलाएंगे क्या वो? किस लिए कहला रहे हैं मनुष्य? क्योंकि फॉर्म ऐसा मिला है कि नहीं? तो कई ऐसे पशु हैं जिनको फॉर्म वैसे मनुष्य जैसे ही मिला है, बट वो 5 लेवल के ही। डार्विन के पूर्वज और कंगारू इत्यादि। तो जो ये 5 लेवल के लोग हैं, ये तो पशु जीवन जी रहे हैं, असंस्कारित, जिनको कुछ ज्ञान नहीं है। लेकिन जो 6-6 लेवल का व्यक्ति है, 2 हाथ 2 पैर हम जैसा दिखने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति सारे जीवन भर कार्य कैसे करेगा? पशुवत करेगा, लेकिन शरीर मिल चुका है उसको मनुष्य का। तो भगवान आध्यात्मिक जगत से किसी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे जो उनको शिक्षा दे लेवल 7 पर आने की, या लेवल 8 पे आने की। 10 की दे सकते हैं उसको? बड़ा मुश्किल है, समझ ही नहीं आएगी। तो ऐसा हो जाएगा कि आप ठीक है, वो एग्जाम्पल चलेगा नहीं। कहने का मतलब क्या है कि एक छोटे बच्चे को, 5वीं क्लास के बच्चे को सीधा आपने कहा, बेटा कल से तेरे को भी यही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करनी है। तो वो समझ नहीं पाएगा। उसको 6th की बात बताइए, 7th की बात बताइए, वो समझेगा, थोड़ा बहुत समझेगा, करेगा नहीं। तो इसी तरह इस संसार में जो चेतनाएं पाई जाती हैं मनुष्य के अंदर भी, वो भी कई प्रकार की है। कुछ को तो कुछ धर्मों में, धर्म समूह में, जाति समूह में, समुदाय समूह में अधिकता मिलेगी। जैसे कोई एक पर्टिकुलर जाति है या समुदाय या एक धर्म है, मान लीजिए धर्म की पर्टिकुलर लोग, इसमें सारे लोग आपको 6 लेवल के मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग 7वें लेवल के भी मिलेंगे और बहुत कम लोग 8वें लेवल के मिलेंगे, और 9वें लेवल के लोगों को आप हाथों में गिन सकोगे, और जो 10वें लेवल के लोग हैं वो 1-2 होंगे, ठीक है। और इस प्रकार जब भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं संसार में समय काल परिस्थिति के अनुसार, तो ऐसे अलग अलग समुदाय और जन लोगों के लिए क्या करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं उसको ये नहीं बोलते, भैया इसको 10th का बोर्ड मत देना, भी उसको क्या देना, उसको ये बताओ माता और बहन में क्या संबंध है, क्योंकि वो भी पशु जीवन से आए जहां पर इन संबंधों की चर्चा नहीं होती थी। तो इनको क्या समझाओ कि माता और बहन के साथ व्यभिचार नहीं करना, और क्या समझाया जाएगा उनको, क्योंकि जब पशु था तब तो सब कुछ खाता था, है कि नहीं? जब पशु जीवन में था तो सब कुछ खाता था, लेकिन अब क्या बताया जाएगा उसको, भाई सारे मत खा, कुछ छोड़ दे, समझ रहे? सारे मत खाओ, ये कुछ छोड़ दो बस। लेकिन जो 6वें लेवल के लोग हैं उनको क्या बताया जाएगा, ठीक है तुम जो खा रहे खा रहे हो, लेकिन 1 दिन छोड़ दो, ठीक है। और जो उससे ऊपर लेवल के लोग हैं उनको बोला जाएगा, भाई इनमें से कोई नहीं खाना तुम्हें, अगर ऐसी स्थिति पड़ भी गई तो ये सब खा लो या इतना से खा लो। और जो 10वें लेवल के लोग हैं उनको बताया जाएगा, ये खाना तो पाप है, उच्च श्रेणी के लोगों को ये बताया जाएगा कि ये नहीं खाना चाहिए, ये हमारे लिए नहीं बना। इनको समझाया जा सकता है ये बात। 9th वाले को अगर आप बताओ 10th के बुक्स दोस्त, तो कोई दिक्कत नहीं है ना उसके लिए, इजीली एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इसमें भी कैटेगरी 100% नहीं करेंगे, इस कैटेगरी में 60-70% मान लेंगे, हाँ कर लेंगे जैसे आपने बोला वैसे करें, लेकिन 20-30% बोलेंगे शायद करें ना करें, खाएंगे भी, और 10% या 5% ऐसे होंगे जो कहेंगे हम नहीं मानते ये सब, हम तो क्या करेंगे जैसे वो सिक्स क्लास के लोग कर रहे हैं वैसा करें। समझ पा रहे बात? तो इस प्रकार इस सृष्टि को करने के बाद 84 लाख योनियों में पूर्व जन्म के कर्म और संस्कारों और इच्छाओं के अनुसार जब भगवान जीवात्माओं को प्रविष्ट कराते हैं तो इतनी बड़ी सृष्टि जिसमें कि पानी के अंदर भी हैं, वृक्ष के रूप में भी हैं, उड़ने वाले पक्षी भी हैं, रेंगने वाले जीव भी हैं, पशु भी हैं और मनुष्य भी हैं, तो ये इस प्रकार स्तर उनका ऊपर बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है। और मनुष्य में भी फिर कई वेराइटीज हैं, कई प्रकार के लेवल्स हैं। कहीं जगहों पर केवल एक ग्रंथ देकर बोला भाई तुम इतना ही सीख लो और इतना मान लो बस, वो अगर उसी को करते रहेंगे अगर ग्रंथ के हिसाब से चलेंगे, और अगर समझाने वाला अगर व्यक्ति सही है, सही शब्द बहुत जरूरी है, जिसको जो तत्व वेता है जो भी ग्रंथ है और ठीक प्रकार से समझाए तो उसमें से भी काफी लोग जल्दी सिक्स और सेवंथ के लेवल पहुंचेंगे, हो सकता है टेंथ में भी पहुंचे अगर सिखाने वाला अच्छे लेवल का है। और अगर सिखाने वाला भी फिफ्थ या सिक्स लेवल का है तो फिर हाहाकार मचेगा, फिर क्या होगा, युद्ध होंगे, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, हत्याएं होंगी और वो हमेशा मिसगाइडेड रहेंगे। लेकिन उसमें फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो करने का प्रयास करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। तो भगवान ने जब ये सृष्टि करी तो इन सब सृष्टि के अंदर अलग अलग वैरायटी के मनुष्यों के लिए भी, अलग अलग जाति और अलग अलग समूह संप्रदायों के लिए भी भगवान ने अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। पूरे संसार में चले जाइए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का रीति रिवाज या धर्म का पालन करता मिलेगा। और ये वो है जो कि एक ऑथराइज सोर्स से दिया गया, और इसके अलावा अनऑथराइज सोर्सेस भी बहुत हैं, जिसमें हमने बताया कि अपने अपने मन से चलने वाले लोग, मेरे ख्याल से ऐसा, मेरे हिसाब से ऐसा, तो इस तरह के प्रकार के लोग भी समाज के अंदर उत्पात ही मचाएंगे। तो हम लोग को भी चलना है, लेकिन अपने मत से चलना है, अपने मन से चलना है कि बताए गए मार्ग जो कि ग्रंथ इत्यादि गए हैं या गुरुजन प्राप्त करते हो देते हैं हमें, उसके हिसाब से चलना है। नेचुरली अगर हम लोग अपने मन से चलेंगे तो फिर मतभेद होगा और उसका उसकी वजह से संसार में जो चल रहा है सिस्टम नुकसान होगा। मन के हिसाब से तो व्यक्ति सारा कुछ काम करता है, और इसी प्रकार के जो मतभेद होते हैं या मानसिक धरातल पर चलने वाले लोग नास्तिक वृत्ति के बन जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल नियम नहीं फॉलो करना चाहता ना, वो गया एक व्यक्ति के पास, कहा कि गुरुजी हमें बताओ क्या मैं जो है ये खजूर खा सकता हूं? कहते हैं खा सकते। कहते इसमें कोई पाप तो नहीं? कहता नहीं। कहता अच्छा अच्छा पानी डाल के खा सकता हूं? पानी में भिगो के। गुरुजी समझ गए, कहते हाँ पानी लगे। कहते अच्छा इसमें खमीर मिला सकता हूँ? खमीर। तो जो पीने वाले लोग सब हंस रहे। अर्थात इन तीनों चीजों को मिलाकर काफी देर सड़ाने के बाद क्या बनता है? शराब बन जाती है। आप प्रैक्टिस मत कीजिएगा कि रेसिपी पता चल गई आज तो सब सो रहे हैं घर पे। तो ये तीन चीज उसने बोला कि इसको अगर पी ले तो क्या है, कोई दिक्कत है क्या? तो गुरुजन के बड़ा तेज आदमी आए है ना, पहले बोलिए ये पाप नहीं है, ये पाप नहीं, ऐसा पाप नहीं है, और तीनों को मिलाकर पी रहे तो गड़बड़ कर दिए, तो मुझे पिलाएगा ग्लास? ये मुझे भी नहीं लग रहा, आप ही लीजिए। तो गुरुजन का अच्छा एक प्रश्न मैं पूछता हूँ उससे, फिर तो पूछिए। कहते अच्छा अगर मैं थोड़ी सी मिट्टी आपके सर पर फेंकूं तो चोट लगेगी आपको? कहता मिट्टी से कैसे लगेगी? कहता थोड़ा पानी मिला के फेंको। कहता तो भी नहीं लगेगी, सर थोड़ी फूट जाएगा। कहता थोड़ा पत्थर मिला के फेंको, कहता फिर तो लगेगी। कहता तो प्रश्न का जवाब मिल गया तुम्हें, कहता हाँ मिल गया। तो कहने का क्या मतलब है कि जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हो मानना नहीं चाहते कुछ भी, और जो हमने बताया किसी भी लेवल का व्यक्ति हो वो इंद्र तृप्ति के लिए साधन ढूंढ ही लेता है, वो व्यक्ति अलग अलग प्रकार के तर्क देगा कि अगर हम ये खाना बंद करते तो ये समाज में बढ़ जाएंगे। बोलते ना कि ये भी तो भगवान ने बनाया है, ये भी तो भगवान ने बनाया है, अगर ये पॉलिसी जंगल के पशु भी सोचने लगे कि जो मनुष्य घूम रहे दो टांग वाले हमारे तो चार चार छह छह आठ आठ हैं, इनको भी खा लेते हैं हम, ये तो भगवान ने बनाया है, तो एक मनुष्य नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो लेकिन जिह्वा की तृप्ति के लिए ये छह से लेकर जो दस तक लोग हैं, नीचे 90 फिर 80 70 50 10 ऊपर तक कम हो जाता है, बट जितने भी लोग हैं ये सब इंद्र तृप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उस हद में क्या है, मेरा मन करता है, मेरा मानना ऐसा है, मैं ऐसे सोचता हूं, मैं तो नहीं मानता, किसने लिखा, मनुष्य ने लिखा होगा, है ना, आप तो डरा रहे हो। तो इस प्रकार के जो जीवात्माएं हैं या मनुष्य में हैं जो लोग, इस प्रकार ये नास्तिक प्रवृत्ति बन जाते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं जो लोग संशय करते हैं ना शास्त्रों के प्रति, नहीं नहीं ऐसे लिख दिया होगा, पता नहीं क्या है करें, कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, इसका तो विनाश ही हो जाता है। विनाश का मतलब ऐसा नहीं कि एक कोई व्यक्ति बम लाएगा उसके पेट में लगेगा बटन दबा देगा ठां, ऐसा विनाश नहीं, इससे भी खतरनाक विनाश है। क्या विनाश है, वो व्यक्ति की चेतना, उस व्यक्ति का मन, उस व्यक्ति का जो संस्कार है सब खत्म, मन के हिसाब से कार्य करेगा और उस कार्य की वजह से जो पाप पूर्ण जीवन में लगेगा उससे वो ऐसे ऐसे घोर नरकों में जाएगा, ऐसे ऐसी जगहों पर जाएगा, पीड़ित होगा, दुखी होगा, परेशान होगा, यातनाएं भुगतेगा कि उसको सूर्य देखने के लिए भी कई कई जन्म लग जाएंगे। प्राचीन ब्रही या उस कथा में अगर हम पढ़ते हैं तो उसने जो यज्ञ के लिए पशुओं को बलि दी और कुछ करा, तो जब उसकी अंतिम समय आया तो सारे पशु ऊपर से देख रहे थे उसको खाने के लिए कर रहे थे, कहते भाई ये कौन, कहते ये सब वही जिनको तूने खाया है, कहते मेरे को ऐसे को देख रहे, कहते तेरी बारी है तो जाओ तो सही है वापस, उसके बाद ये सब तैयार बैठे हैं खाने के लिए। लोगों लगे क्या मतलब है, जब मर जाते तो हमारा शरीर तो नहीं होता, जला देते उसमें, हम कैसे हो सकते। लेकिन देखिए भगवान की इतनी सुंदर रचना है इस संसार को लेकर कि जिस व्यक्ति ने जो जो जैसा काम किया है गलत गलत, उसको वो सब भुगतना पड़ेगा उतनी पीड़ा के साथ या उससे ज्यादा, लेकिन जो यूनिफॉर्म है उसका चेंज होगा। अभी जिससे पांच तत्वों का मिला है इसको तो छोड़ के जाएंगे, लेकिन जिसने बुरे कर्म किए हैं वो नरकों में जाता है लेकिन यातना शरीर के साथ जाता है, उसको एक अलग प्रकार का शरीर मिलता है, हर तरह की पिटाई होना, ऊपर से गिराया जाना, फ्राइड करना, है ना, मसाला छिड़कना ऊपर, सब कुछ करेंगे, उसको मांस खिंचवाना, सब कुछ ऐसा करते हैं। लेकिन ये सब यातनाएं मिलती हैं उसको, दर्द पूरा होता है, आनंद पूरा आता है उसको वहां पर, और लेकिन मरता नहीं आदमी, आत्मा के लिए तो मृत्यु है ही नहीं वैसे, तो तब तक रहता है वहां पर जब तक उसको पनिशमेंट मिलनी है, उसके बाद फिर से दूसरा शरीर दिया जाता है। तो यहां पर हम लोग समझाना जो चाह रहे हैं वो ये, जो हिरण्यकश्यप वो गलती कर रहे हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए क्या कि ऐसी गलती हम भी करें, वैसी गलती हमें नहीं करें। वो अविधि पूर्वक हम ब्रह्मा जी को ही सब कुछ मानकर अपने मन से चलते हुए सब कुछ भगवान को ना, क्योंकि भगवान से तो द्वेष है ना जी, अगर द्वेष नहीं करेगा और लंबा चौड़ा द्वेष नहीं करेगा तो भगवान अवतरित कैसे होंगे, ऐसी परिस्थितियां नहीं आएंगी कि भगवान को अवतरित होना पड़े। अगर हिरण्यकश्यप को भगवान को ब्रह्मा जी बोलते एक्सक्यूज मी एक मिनट मिनट क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो आप, क्यों मुझे भगवान बोल रहे हो, आपको पता नहीं कौन है, ब्रह्मा जी बोल सकते थे वही दो मिनट का लेक्चर देते ठीक कर देते उसको, लेकिन नहीं, क्यों, योजनाएं मालूम है कि ये जो है व्यक्ति एक तो भगवान से ऋषा द्वेष करता है, ऊपर से भगवान को भी इतना कुछ बोलेगा और बोलेगा कि वो भगवान वो विष्णु जो सबके हृदय में परमात्मा बनके छुपा हुआ है सामने क्यों नहीं आता, तो इस प्रकार बोलता है और फिर अपने उनके भक्त प्रहलाद को जो है काफी यातनाएं देता है। प्रहलाद एक्चुअली रिलेशन में तो प्रहलाद के पिता हैं, रिश्ते में तो कहते हैं तुम्हारे पिता लगते हैं, लेकिन भगवान परम पिता है कि नहीं। और जब प्रहलाद जैसे भक्त के ऊपर अत्याचार होगा तो फिर भगवान अवतरित होंगे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान के रूप में। तो हम बता रहे थे कि अलग अलग अवतार लेते हैं अलग अलग परिस्थितियों में। तो ये एक ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें इसने हिरण्यकश्यप जी ने सब कुछ मांग लिया कि ऐसा ना मरूं ऐसा ना मरूं ऐसा ना मरूं, तो फिर भी भगवान जो है ऐसा सुंदर अवतार लेकर आए जिससे कि सारी बातों ब्रह्मा जी की बात को पूरा किया जा सके, हिरण्यकश्यप के सारे वरदानों को पूरा किया जा सके और फिर मारा जा सके। परशुराम के रूप में भी आए और परसा उठा के पूरी पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, खाली कर दी पूरी पृथ्वी, क्योंकि उस समय उस चीज की जरूरत थी, क्योंकि उस समय क्षत्रिय लोगों ने क्या कर दिया था, वो पापी बन चुके थे पूरी तरह, तो उनका वध होना जरूरी था, है ना। तो राम के रूप में भी भगवान आए तो पूरी मर्यादाओं में रहे, ऐसी मर्यादाएं पालन करी जो कुछ सोच भी नहीं सकता, और अपने जीवन में ऐसा पालन करना भी व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल, ऐसी परिस्थितियों में रहकर भी मर्यादाओं का जो है पालन किया। तो भगवान के जितने भी अवतार हैं उन सब अवतारों में, चाहे वो किसी भी योनि में लिया हो भगवान, तो एक पर्टिकुलर उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और वो सब अवतार अपने अपने लोकों में अपने अपने पार्षदों के साथ उनके साथ रहते हैं, उनका गुणगान करते हैं सब भगवान। और यहां पर अब जो है हिरण्यकश्यप जो अविधि पूर्वकम प्रार्थना कर रहा है देवता उनसे ब्रह्मा जी के आगे, तो अब वो भगवान इनको सब कुछ बोल रहे हैं और अब उनको मालूम है कि थोड़ा तो बटरिंग तो करना पड़ेगा ना, उनको वरदान चाहिए सारे, तो इसलिए भी कर रहे हैं। और आखिर में यहाँ पर प्रभुपाद जी इसमें जो विशेष एक बात करते हैं अचिंता भेद भेद तत्व की, कि भगवान अलग नहीं है शक्तियों से, इंस्पिरेशन से जो बताया उन्होंने। तो अचिंता भेद भेद तत्व का मतलब है जब हमारे इसी संप्रदायों में अलग अलग प्रकार के जब ज्ञान दिए गए, द्वैतवाद है ना, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद है ना, इस प्रकार करके जो हमारे आचार्यों ने, हम इन चार संप्रदायों के आचार्यों ने ये सब पेश किया, तो उसी में चैतन्य महाप्रभु ने इन चारों संप्रदायों से दो दो गुण उठाए और अचिंत भेद भेद तत्व की स्थापना करी। अचिंत भेद भेद तत्व का मतलब है जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं है, बस एक ही है जो है अंदर ही है सब कुछ, कोई परमात्मा होना नहीं है, सब कुछ नहीं है, बस एक ही है ना। कुछ लोग बोलते नहीं एक नहीं है दो है, है ना, कोई कहते हैं अद्वैतवाद अद्वैतवाद दो नहीं है एक है, और कोई कुछ लोग बोलते हैं द्वैतवाद, द्वैत मतलब आत्मा भी है परमात्मा भी है ना। फिर इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने क्या विजन दिया, क्वालिटी में बताया कि एक है भी और एक नहीं भी। जैसे आत्मा और परमात्मा एक किस रूप में है, गुणों के रूप में, जैसे सोना और सोने से निकला हुआ छोटा सोना, एक तोला सोना, तो सोना सोना ही कैरेट, समुद्र और उसकी एक बूंद, क्वालिटी में तो क्या है सेम है, लेकिन क्वांटिटिवली वी आर डिफरेंट है ना। आत्मा और वो परमात्मा में बड़ा फर्क है, वो विभू है और हम क्या है अंश अणु। तो इस प्रकार अचिंत भेदभाव वो दिया, तो इसका उद्देश्य यह था देने का कि जीवात्मा और परमात्मा एग्जिस्ट करती हैं, बट गुणों में समान है लेकिन मात्रा में, गुणों की मात्रा में भेद है। तो इस प्रकार का अचिंत भेदभाव तत्व दिया। तो ये आखिर में प्रभुपाद ने विशेष बात बोली है क्षेत्र महाप्रभु, इसमें ये दर्शन जो है इसका हम पालन करते हैं अपने ब्रह्म माध्यम वाड़े संप्रदाय में, ठीक है। तो हम लोग समझ सकते हैं इस पर्टिकुलर श्लोक से और इसके हिरण्यकश्यप की चेतना से कि व्यक्ति को चाहिए कि वो शास्त्रों को, गुरु के और साधु की शरण में जाकर ज्ञान को ठीक प्रकार से ले, ताकि हम कोई भी कार्य अविधि पूर्वक ना करें, और हमें मालूम होना चाहिए भगवान कौन है, भगवान की शक्तियाँ क्या हैं, और किस प्रकार उनका हमें भजन या कीर्तन करना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की